अब यहाँ हमारी बात पलटती है। हमारा एक दूसरा टॉपिक जो आज थोड़ा सा हमने कुछ साथियों की रिक्वेस्ट पे भी किया है, लेकिन मैं उसको कुछ करीब के दौर के हालात वाकया से जोड़ते हुए एक वीडियो दिखाऊंगी आपको भी इंशाल्लाह, फिर उस पर हम बात करेंगे। एक शख्स था, मैं एक पर्सनली, मेरी कोई उससे अफिलिएशन नहीं है, कोई मेरी इस मिसाल से ये ना सोचे कि मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ। हमने हर दीनदार की इज्जत करनी है। मैं तो एक सोच को प्रमोट करती हूँ कि एक शख्स जब गुनाहों की जिंदगी में पड़ा होता है तो वो दूसरों के लिए क्या होता है, और जब उससे निकलता है तो वापस पलटता है तो फायदेमंद कैसे होता है। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे मुल्क की रिसेंटली दुनिया से गई है, जुनेद जमशेद का नाम। पहले मेरे ख्याल उनकी जिंदगी में लोग कम लेते थे, अब ज्यादा लेते हैं। किसी ने उनकी जिंदगी पे एक छोटा सा वीडियो बनाई है, वो आपको दिखाते हैं। तो फिर मैं अपनी बात यहाँ क्लोज करूंगी कि जुनेद जमशेद जब तक गाने गाता रहा, वो लोगों की जज्बात को भड़काता रहा। अल्लाह का शुक्र है उसने अपनी जवानी में तौबा कर ली कि जब वो दुनिया से गया तो वो लोगों को खैर बांट रहा था। इस सोच के साथ देखिएगा कि अगर वो अपनी पहली हालत पे दुनिया से जाते, इतने ही लोग उनको चाहते, लेकिन आज उनके दामन में क्या होता। ये सिर्फ आपको रिफ्रेश करने और टॉपिक चेंज करने के लिए, आइए सुनते हैं। और इसके बाद वाला हमारा टॉपिक अब इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा होगा। ये दफ है इसलिए घबराइएगा नहीं, ये म्यूजिक नहीं है।
रिश्ते तोड़ आया हूँ खुदा बंदा।
अच्छा है ना। आप देखिए कि आज अगर हम मुसलमान दूसरे मुसलमानों के लिए सिर्फ इतना भी सोच लेना कि सारी दुनिया शैतान के और नफ्स के तकाजों को बुरा करने पे लगी हुई है, ऐसे दौर में अगर किसी को अल्लाह अपने दीन के लिए चुन ले, इससे बड़ी क्या बात है। आप सोचिए, ये शख्स अगर उसी सरगम को पकड़े हुए दुनिया से जाता तो आज इतने लोगों की हिदायत का जरिया बनता? हमें नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, अल्लाह जाने, अल्लाह का बंदा, हमारा गुमान अच्छा है। मैं आपको सिर्फ ये सोच दे रही हूँ, हम में से किसी को नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है। मुझे तो अपना बिल्कुल भी नहीं पता। हर लम्हे मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह, अगर मैं किसी को फायदा दे सकती हूँ और मैं नहीं दे रही, किसी के मैसेज का जवाब देने से अगर किसी की खैर हो जाती और मैं नहीं देती, तो मैं कल जवाब दे हूँ। अल्लाह की कसम, रात दिन सुबह शाम यही सोच होती है। किसी को सिखा सको तो सिखा दो, किसी का कोई मसला सुन लो तो सुन लो, किसी की कोई तरबियत है, किसी की क्यों, क्योंकि नहीं पता कि हमने यहां से भी उठना है। और आज आप देखिए मौत कितनी करीब हो गई है, और जिनके दिल सख्त होते हैं ना, वो मरने वालों पे कमेंट करते हैं, कुछ कहते हैं, नाउजुबिल्ला चल के मर गया, गुस्ताखे रसूल, और कुछ कहते हैं शहीद है। क्या मेरा आपका नसीब यही है जाने वालों पर कमेंट दें? आपको मुझे क्या लगे वो कौन था? आप बताएं आप कौन है और मैं कौन हूं? अभी मैं जिंदा हूं, आप भी जिंदा हैं। तो हमें ये देखना है कि आज अगर हम जिंदा हैं तो हमें अपनी जिंदगी से कैसे फायदा उठाना है। हमारी बहुत ही अजीज साथी हैं, तो मैं पहले इनको बीच में इसलिए ऐड करवा रही हूँ कि इनकी बात, ये अगली बात जब हम करने वाले हैं, इसका मोटिव बनी। माशाल्लाह पिछले 5-6 साल से हमारी ये बहन हमारे साथ हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगी, हर क्लास में किसी ना किसी तरह सुनती हैं। लेकिन जो बात इन्होंने मुझे कही कि एक हादसा इनके साथ कुछ हुआ, अल्लाह का हुक्म था, कोई बात नहीं है, होता है। लेकिन जो बात इन्होंने कही कि उसाज़ा मुझे उस वक्त सब भूल गया, मैं क्या करूं, हाथ पांव नहीं पड़ जाते। पति आप अपनी फीलिंग्स बताएं, जो भी आपके साथ हुआ। तो मैं इंशाल्लाह सिंपल वर्ड्स में अपने साथियों को ये बात बताना चाहूंगी, और इस मौके पे इसलिए बताऊंगी कि ये आपके और आपके भाई के लिए सदका जारिया हो, कि अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई मामला हमारे साथ हो तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए।
जी आज से ठीक 21 दिन पहले, हफ्ते का ही दिन था, 24 दिसंबर थी, सुबह का टाइम नॉर्मली हमारी जैसे सुबह होती है, शादी वाला घर था, रात को भाई की बेटी रुखसत हुई, तो सुबह के टाइम पे जैसे आराम से रिलैक्स होके सारे उठते, अपनी रूटीन के मुताबिक उठे, सारा कुछ हुआ। भाई भी रात को थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन बाद में बिल्कुल ठीक रहे, आराम से उठे, बैठे, खाया पिया। सुबह 8:30 का टाइम होगा अंदाजन, 8:30 का, तो मैं उनके पास बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ, बातें कर रही हूँ, मुझे बता रहे हैं कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये जो उन्होंने ड्रिप की नाली सी लगाई है मेरे, ये मेरे दर्द कर रही है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उनको कह रही हूँ भाई जी आप जाएं, जाके डॉक्टर को चेक कराएं। कहते हैं नहीं कराऊंगा, कल या परसों कराऊंगा। तो मुझे आज कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक 10 मिनट बाद ही वो बरामदे से उठ के सेन में आए हैं। पाकिस्तान में जैसे पता है बड़े सेन होते हैं गांव के, तो वो ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर का फासला होगा। तो चल के आए हैं, बैठे हैं, किसी को मिले हैं, तो वो को मिलने के लिए मर्द आए हुए थे, 7-8 लोग मर्द थे, उनको मिल गए तो चारपाई पे बैठते साथ ही जो है ना कहते हैं कि मुझे पानी दे। जो पानी लेने जा रहे हैं वो अभी आधे रास्ते ही नहीं पहुंचे तो एकदम पीछे गिर गया। ना उन्होंने हूं की है, ना हाय की है, ना बोले है, ना कोई। जब पीछे गिरे दूसरे मर्दों ने फटाफट उनको संभाल लिया, कहते हैं बेहोश हो गए हैं, नाक बंद कर रहे हैं। फिर जब जो ही इसी दौरान मुझे पता चला, मैं भागती हुई, मैं, मेरी बहन, सारी फैमिली की औरतें मर्द हम सारे भाग पड़े हैं वहां पे। पहुंची है तो तब तक वो जो है ना उनकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुली थी, तो मैंने जल्दी से मुंह के ऊपर हाथ लगा के ना ऐसे ऐसे मार के तो हल्का हल्का बुलाया, पाजी पाजी अखा खोलो पाजी, क्यों होया पाजी क्यों। तो समझ आ गई मुझे कि ये बेहोश हो गए। वो कहते हैं नाक बंद कर रहे हैं, तो कहते हैं इनको ना, वो पंजाबी में कहते हैं दंकन पै गई, इनके दांत आपस में इकट्ठे हो गए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि खुद ही मुंह खोले। मैंने अपने हाथों से अपने भाई का मुंह खोला, गोलियां चबा के मुंह में डाली, पानी डाला। उस वक्त जो मेरे जहन में मुझे ये ना समझ आए कि मैं इस कैफियत में, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरा भाई मर रहा है या मेरा भाई मर गया है। उस वक्त उनका ऑलरेडी जिस्म ठंडा हो चुका था, मैंने सीने पे हाथ फेरा, मेरी बहन सीना दबा रही थी, मैं उसको कहती जोर जोर से दबाओ। कोई हमें कहता कि इनके ना वो मोबाइल निकाल लें, जेबें चेक करें ना, तो वो भी हम साथ साथ करती जा रही हैं। तो मैं जो है ना, वो साथ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त तो मैं कलमा शरीफ पढ़ूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं यही वो जो दुआ है कि बीमार हो तो उसके लिए असअलुल्लाह, ये वाली दुआ जो है ना, मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ती जाती हूँ। साथ दिल में ये भी कहती जाती हूँ कि या अल्लाह इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह माजिरनी फी मुसीबत। तो मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं साथ इन्ना लिल्लाह भी पढ़ूँ ना, या मेरे जेन में ही नहीं कुछ आ रहा था। तो मुझे ये था कि किसी तरीके से मेरा भाई आंखें खोल ले। मैं सारे टोने टोट के, वो कहते हैं डॉक्टर आया, उसने कहा ब्लड प्रेशर बहुत लो है। मैंने कहा इनके पाँव नहीं मले, इनके पाँव पे गर्म पट्टियाँ पानी तौलिया रखे। जब वो डॉक्टर के आने से पहले सारे ये तरीके करके ना, तो मैं खड़ी थी, तो मुझे उस वक्त इतनी अपनी बेबसी आई। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि या अल्लाह है कोई इस वक्त जो हमारी मदद करे। लेकिन ऑलरेडी उस वक्त तो वो जा चुके थे, वो कोई कमजोर भी नहीं थे, कोई बीमार नहीं थे। 6 सवा 6 फुट का मर्द था, जिस्म भारी था। सेकंड नहीं लगा जब मैंने उनके मुंह में कुछ डाला था, शहद और गोलियां, तो बस जैसे ये बंदा ऐसे सांस लेता ना, तो इस तरह की खराश सी गले से निकलती। उस वक्त मुझे पता चला ये कि मौत कितनी मजबूत और कितनी ताकत वाली चीज है। मेरी अम्मी पास खड़ी थी, मेरे अब्बा पास खड़े थे, मेरी अम्मी कह रही थी ओ सगीर किए हो, ये सगीर किए हो, नहीं सुना, नहीं सुनने देती हुई ये मौत। ये इतनी बड़ी हकीकत है। 10 मिनट बाद ही हॉस्पिटल लेके गए, तो उन्होंने कहा कि आप इनको घर ले जाए। सिर्फ 5-6 घंटों के अंदर अंदर मेरा भाई कब्र में चला गया।
पांच छह घंटे तो कब्र में जाते हुए लगे हैं ना, दुनिया से जाते हुए
जाते
तो चंद
उनके
मिनट लगे हैं।
चंद मिनट भी, वो कहते हैं जो मुझे लग रहा था ना, मेरे भाई को चंद मिनट भी नहीं लगे, वो उनको चंद सेकंड लगे। यही मैं बाद में भी सोचूं कि लोग कहते हैं कि सुनते हैं कि जिस्म का सबसे बड़ा मजबूत हिस्सा जो है ना, वो सबसे बड़ा अज़ा मजबूत जो है ना, वो दिल है। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मौत ने सबसे पहले मेरे भाई का दिल ही निकाला था। बाकी दिन भी जो है ना, अल्लाह का शुक्र है आज 21 दिन हो गया, टाइम गुजर रहा है। लेकिन ये चीज कितनी करीब है, कितनी सख्त है, इसका हमें अंदाजा नहीं है। ये वाकई जिसके ऊपर गुजरती है पता उसको चलता है।
कोई नसीहत करें अच्छी सी,
हमें भी तौफीक दे कि हम भी कुछ ऐसा कर सके, और हमारे लिए वो सदका जारिया वाले जो 3 काम हैं वो जारी रहें। तो लेकिन यही है कि अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं वो खुद करना है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तिला की बिही वफद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक तफ्तीला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मुसीबत ज़दा को देख कर ये दुआ पढ़ ली जाए जो मैंने अभी पढ़ी है, तो अल्लाह ताला फिर आपको उस मुसीबत से बचा लेता है। तो मैं दुआ करूँगी कि बाजी को जिस तकलीफ़ में अल्लाह ने डाला या जो इनके साथ हुआ, हम सबको बचाए और हम में से कोई भी अपने भाई बहनों की ऐसी कोई कैफियत ना देखे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सईदु मन वुईदा बिगैरिही, अक्लमंद वो है जो दूसरे के अमल से नसीहत ले ले। तो खुद जब मौत आनी है तो फिर तो वक्त नहीं रहना, तो आज मुझे आपको अभी से तैयार रहना है। बाजी की बातें सुन रही थी तो मुझे सूरत क़यामा याद आ रही थी। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि बल युरीदुल इंसानु लियफ्तुरा अमामा, बल्कि इंसान तो यही इरादे करता है कि अपने आगे फजूर ही भेजे, यानी जिंदगी भर उसकी कोशिशें गुनाहों के लिए लगी होती हैं। यसअलु अय्याना यौमल क़यामा, पूछता है बड़ी अकड़ से कब आनी है क़यामत। यानी जब हम जिंदा होते हैं, और ख़ास तौर पे पीछे एक इंसान यानी काफिर नुमा इंसान का जिक्र है, तो वो समझते कोई नहीं आनी क़यामत। लेकिन अब अगली आयतें मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूँ और आप महसूस करें कि हम पे ये वक्त आया हुआ है। फरमाए फ़ाइज़ा बरिकल बसर, बस जब नज़रें चुंधिया जाएंगी। बरिक कहते हैं, बर्क बिजली को भी कहते हैं ना, चुंधियाना, और बसर आंखें, क्योंकि आपने भी सुना हुआ है कि मरते ही आंखों की पुतली जो है वो ऊपर चढ़ जाती है। اسی کی طرف اشارہ ہے. فیضا بریک البصر و خسف القمر, چاند گہنا جائے گا, و جمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے, یعنی جو مرتا اس کی قیامت آ جاتی ہے. گو کہ یہ عمل اصل قیامت کی صورت میں ہونے ہیں, لیکن جو مر رہا ہوتا ہے نا اس کو یہی لگتا ہے قیامت آ گئی. یقول الانسان یومئذ این المفر, انسان پوچھتا ہے آج میں کدھر بھاگ کے جاؤں. آپ بھی کھول لیں اپنے سامنے اگر ہے تو, ایک ایک لفظ کھول کے بول رہی ہوں. انسان پوچھے گا قیامت کے دن میں کدھر جاؤں, ہے کوئی مفر, فرار کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا وہی لفظ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ. جواب آئے گا کلا, ہرگز نہیں, لا وزر, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں, کوئی آڑ, کوئی دیوار, کوئی ٹلا, کوئی ڈبا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. الا ربی کا یوم از المستقر, کیونکہ آج تیرا تیرے رب کی طرف ہی مستقر ہے. یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن ہوگا کیا, یونب الانسان یوم از بیما قدم واخر. یہ بڑا مشکل ہے, موت مشکل نہیں تھی اگر یہ نہ ہوتا کہ رب کے سامنے کھڑا کر کے انسان کو بتایا جائے گا. یونبا نبا سے خبریں, خبر دی جائے گی انسان کو اس دن کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑایا. آج تو ہم اپنی دنیا کے لیے نا, اس دن سمجھ آئے گی کہ کیا ہماری پرائیورٹیز تھیں, کس کو چھوڑا تھا, کس کو پکڑا. یہ دنیا نے ہمارے پاؤں پکڑے ہوئے نا, یہ اس دن اخر بن جانی ہے. اور جو آج چھوٹے موٹے اللہ کے رستے میں ٹوٹے پھوٹے قدم ہے نا, ماں قدم ہوا سارا ہوں کی صورت میں, یہ کل وہاں جا کے جمع ہو جانے, اور اللہ یہی جمع کر لے. میں تو کہتی ہوں اللہ یہ تڑپ قبول کر لے, ہمارے عملوں کو نہ دیکھ, بس اس تڑپ اور طلب کو دیکھ لے, وہ وہاں دکھے گی. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان خود اپنے نفس کو خود جانتا ہے. آپ مجھے اس وقت بڑا نیک سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو پڑھا جو رہی ہوں, آپ سے ایک سٹیپ اونچا بیٹھی ہوں, لیکن اللہ کہتے ہیں انسان کو خود پتا ہے وہ کتنے پانی میں. ولو القا معذیرہ, دوسروں کے سامنے کتنے عذر کیوں نہ پیش کروں, میری یہ مجبوری, میری یہ پریشانی, سچی مچی, بٹ دل کے اندر پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور نہیں کر رہی, یا کتنا کر سکتی تھی اور کتنا نہیں کر رہی, اور کتنا کر رہی ہوں اور اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہوں, یہ بندہ اور رب جانے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں تھوڑا سا وحی کی آیتیں اس کو اگر پیچھے کر کے اگلی آیتوں میں موت کا ذکر ہے, سنیے گا کہ جب ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کی روح جسم سے کس سوچ کس طرح سے نکلتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو کیسے آسان کرتا ہے کہ ملک الموت انسان کے جسم سے روح کو نکالتا ہے. آیتوں کے کھلنے تک میں چند باتیں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ اللہ نہ کرے یہ کیفیت جو بھی آپ نے سنی کسی کے ساتھ ہو تو کیا کیا جائے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ شادی والا گھرانہ تھا اور غم میں بدل گیا. بچی کے ولیمے کا دن ہے, میں باجی سے کہہ رہی تھی جس دن ڈیٹ رکھی تھی کوئی پتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں تاریخ منحوس, فلاں منحوس, کچھ بھی نہیں پتا. خوشی کے گھر میں غم آ سکتا ہے, پہلی سوچ تو اس میں یاد رکھیے, جب بھی کوئی ہمارے اس گھروں میں خوشی کا موقع آئے تو اس واقعے کو یاد رکھے. اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل, رات کو دن میں, دن کو رات میں بدل سکتا ہے نا. تو میں نے اس واقعے سے جو بات سیکھی ہے وہ کیا ہے کہ خوشی ایک سیکنڈ میں غم میں بدل سکتی ہے, اور غم خوشی میں بھی بدل سکتا ہے. تو مایوس نہ ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ. دوسری چیز جو مجھے اپنے اون پہ سمجھ آئی ہے وہ کیا ہے کہ ایسے وقتوں میں ہوش اور حواس کس کے قائم رہتے ہیں, یا کیا کرنا ہے جو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو. اب جو میں بات کہنے لگی ہے بڑی مشکل میرے لیے, مجھے اپنے پیاروں کا سوچنا, آپ کو اپنے پیاروں کے لیے, یا میرے لیے میرے پیاروں کا سوچنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ کر لیں گے نا تو آسان رہیں گے. اور وہ کیا ہے, ہمیشہ ایسی خبر سننے کے لیے تیار ہیں. اپنی موت, اپنے گھر والوں کی, اپنے شوہر کی موت, اپنے بھائی بہنوں کی, اپنے ماں باپ کی موت کے لیے ہر لمحے تیار ہے. خود کو سپوزڈلی سنائے یہ خبر آ رہی ہے, پہلے سے اس کی ریہرسل کر لیں. صحابہ کرام تو آپس میں باتیں کرتے تھے, جب میں مروں گا تو یہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی عائشہ کو کہہ رہے ہیں, عائشہ اگر تو پہلے چلی گئی تو میں تجھے غسل دوں گا, اور میں چلا گیا تو مجھے دے گی. تو یہ شوہر بیوی آپس میں باتیں کرتے تھے. کبھی اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی موت کو ہوا نہ بنائیں. کچھ نہیں لے کر جاتا ہم سے, دے کے گئے. جس کو اپنے باپ کا ورثہ ملا اس کو تو پھر دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی. زندگی میں باپ سے 100 روپیہ لینا بھی مشکل لگے, اور ان کی آنکھیں بند ہوتے کروڑوں روپے آپ کو مل جائے, یہ ہے دنیا. بات سمجھ گئے, ہمیشہ تیار ہے, ہمیشہ تیار ہے. پیار کریں, دل میں نہ رکھیں. میں نے کسی کو ایک دن ایسی باتوں میں اپنی ساتھیوں میں سے کسی کو کہا, میں نے کہا مجھے اپنے شوہر سے محبت بہت ہے, لیکن میں نے اپنے دل میں نہیں ان کو رکھا ہوا, دل میں اللہ. کیوں؟ कहती कैसे? मैंने कहा मेरे दिल में होंगे, अल्लाह ना करे कल उनको कुछ हो गया तो मेरा दिल बंद हो जाएगा, मेरे दिल में कोई नहीं है, मेरा अल्लाह, मेरे रब का फैसला है। रदी तो बिल्ला ही रब व बिल इस्लामी दीना व बी मोहम्मद है नबीन। और याद रखिए ये क्यामत की निशानी है, अचानक मौतें। हदीस में आता है कुर्बे क्यामत जिना जब आम होगा तो एक तो जवानों की मौत होगी कसरत से और एक सडन डेथ होगी। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने बताया 24 साल के जवान बेटे की डेथ हुई है, आम बात है, शादी हुई डेथ हो गई, ये हो गया वो डेथ हो गई। डेथ ऐसे बन गई आज यकीन करें कि पहले तो किसी की मौत की खबर सुन के 6-6 महीने तक दिल से खौफ ही नहीं जाता था, अब वो खबर बन गई है, मैं बताऊं उसको बताऊं उसको बताऊं, तो जहनी तौर पे तैयार है। हकीकत है, इसको समझिए, मौत से पहले तैयारी करें, मौत से डरना नहीं है, तैयारी करें। हमें अपने प्यारों की, देखिए अब ये बात चुभेगी, तकलीफ वाली है, और बाजी को शायद ज्यादा दुख हो क्योंकि उनको नया नई चोट लगी है, भाई की डेथ की चोट लगी है ना, तो भाई नमाज पढ़े बगैर सोते हैं, अगर कोई किसी के भी तो चोट लगती है। अगर हमारे बहन भाई किसी गुनाह में मुलव्वस हैं तो क्या यही सदमा होता है? कितनों को बात समझ आ गई है? जब हमारे प्यारे दुनिया से जाते हैं तो हम रोते हैं, लेकिन उनकी नमाजें फौत होती हैं हमें नहीं पता। अगर अल्लाह ना करे कमाई में कोई गड़बड़ है, फराइज में कमी है, कोई बुरी आदत है, हम सब में हो सकती है, हमारे अंदर भी है, तो उस पे ज्यादा सदमा करें, मत सोचें कि ये ज्यादा बड़ा सदमा है किसी का जाना, ये ज्यादा बड़ा सदमा है कि वो गुनाह करें। रोएं इस बात पे कि मोहलत अमल खत्म हो गई, या अगर तौबा का मौका था तो तौबा खत्म हो गई। जब हम जिंदगी में तड़पेंगे ना अपने भाई बहनों की हिदायत के लिए, उनकी नमाजों के लिए, रोजों के लिए, तो देखिएगा फिर एक ही सदमा होगा बस मौत के वक्त में, कि उनकी नेकियों का अकाउंट बंद हो गया, अब वो मजीद नेकियां नहीं कर सकते, इसके लिए तैयार है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब कोई दुनिया से जाने के ऐसे असरात हों जैसे ये बाजी ने बताया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी खूबसूरत गाइडलाइन दी है कि मैं कहती हूँ किसी तीसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। हकीकी बात है, इंसान जब जहनी तौर पर तैयार नहीं होता तो हिलफुलाहट होती है, और जब तबीयत में बुखलाहट और हर बात पर हाइपर होना होना फिर ज़्यादा होती है, कुछ ठंडे मिजाज से सह जाते हैं, ऐसे वक्त में ठंडे मिजाज की जरूरत होती है। हालात को देखें, समझें इस वक्त क्या करना है। मैं जैसे अपने ऊपर सोचती हूँ, जहाज में बैठते हैं ना तो कभी जहाज हिलता है तो खौफ आता है कभी कि भाई ये गिरेगा, तो मैं उस वक्त फौरन खुद से सोचती हूँ मुझे इस वक्त क्या पढ़ना चाहिए। अगर मैं इस्तग़फ़ार करूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, मौत का वक्त अब करीब है, तो वो तो 3 सातों पहले मेरी खत्म हो गई। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं वो हदीस की याद आती है कि कोई चीज सवारी गिरे ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो जहाज हिले, तो मुझे उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद वो हदीसों और दुआओं की लिस्ट चल पड़ती है, सवारी नीचे हुई है गिरी है हिली है तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं ना झटका लगे तो बिस्मिल्लाह। अब मुझे ये याद है तो मुझे उस वक्त याद रहेगी ना, वरना कहाँ याद रहेगी। फिर उसी तरह स्टेप बाय स्टेप, अच्छा अब इस वक्त क्या है, ला इलाहा जिसका आखिरी कलमा हो उसको अल्लाह बख्श देगा, है ना, तो कलमा जारी हो जाता है। अब अपनों भी अगर ऐसी कोई कैफियत दिखे, पहली बात है होश आवाज कायम रखने चाहिए, आपकी घबराहट से अगर वाकई हो सकता है कि अगले के ऊपर कोई मौत का वक्त नहीं आया अभी, वैसे ही बीमार है तो आपकी घबराहट से वो घबराएगा, हमें तो नहीं पता ना कि अगला आप चलने वाला है, तो आप सुकून से रहें, रिलैक्स फील करें और फौरी दिमाग इस्तेमाल करें। अगर अपने इन मुल्कों में तो एम्बुलेंस इस्तेमाल की जा सकती है, कॉल करना दूसरों को, लेकिन मरीज को घबराहट में नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि यह अब आखिरी वक्त है, असरात होते हैं, बिल्कुल समझ आने लगता है, पाँव सीधे होने लगते हैं, पीले हो जाते हैं, हाथ पाँव ठंडे होते हैं, तो हमारे कल्चर में ये जो है ना कि पानी मुंह में डालें, नहीं डालना चाहिए। वो क्यों? देखिए मरने वाले के मुंह में जब हम पानी डालने लगते हैं ना, तो पानी मुंह में होगा तो वो कुछ पड़ेगा? कलमा पढ़ना चाहता है? नहीं पड़ेगा। ठीक है, नबी सल्लम की हदीसों से क्या पता चलता है, चंद रिवायतें सुन लीजिए। फरमाया कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि किसी के ऊपर कोई ऐसी वक्त आ गया तो खैर की बातें करें उसके पास, लक्केनु तलकीन करो अपने मरने वालों को कलमे की। सबसे खूबसूरत चीज तलकीन है। अब तलकीन है तबलीग नहीं है, अब वक्त भूल गया कि बेटा कलमा पढ़ो, भाई जी कलमा पढ़े, नहीं, अगर वो तकलीफ की शिद्दतों में इनकार कर दे फिर तलकीन कैसी है? आप पढ़े, देखिए किसी को गुनगुनाता देखते हैं ना लोग तो खुद भी गुनगुनाने लगते हैं, है ना, तो आप कलमा पढ़ें। यानी सबसे खूबसूरत चीज़ यह है कि मैयत के पास बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकालें। आप हदीस सुन लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शद्दाद बिन औस से रिवायत है कि जब तुम फौत होने वालों के पास मौजूद हो तो इनकी आंखें बंद करो, यानी अगला काम ये भी लिख लें, अगर महसूस हो गया कि अब जान चली गई ना तो फौरन पहले आंखें बंद कर दो, क्योंकि जब फरिश्ते रूह कब्ज करके वापस जाते हैं तो नजर रूह के पीछे होती है और मुर्दों के पास बैठकर भली बात कहो, क्योंकि घर वालों की बातों पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। ये हमारे कल्चर में बहुत अहम है बात बतानी। उसी वक्त तो लोग कहते हैं लुट गई तो बर्बाद हो गई तो तबाह होगी, फरिश्ते कह रहे हैं आमीन। नहीं कहना, अच्छी अच्छी बातें करें। फिर किसी के मरने के ऊपर या ऐसी हालत है तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लुफली खैरम मिनहा, ये दोनों पहली रिवायत इब्ने माजा की थी और दूसरी मुस्लिम की रिवायत है। ये पढ़िए इन्ना लिल्लाह कसरत से पढ़ें। फिर अगला अमल ये कि मैयत का चेहरा फौरन ढांप दें। मैं अखलाकी बातें भी इसलिए बता रही हूँ कुछ, क्योंकि हमारे कल्चर में ये नहीं है। हमारे कल्चर में मुंह देखने पे बहुत बात होती है। मैं आप सबको नसीहत पहले भी कर चुकी हूँ, आज फिर करती हूँ, अगर मैं आपके सामने मर गई तो मेरा मुंह कोई ना देखे। सीधी सी बात है, अभी देख ले, मरते हुए देखना है आके मेरा मुंह। क्या मरने की खबर सुन के लोगों को आएंगे देखने? मैं तो कहती हूँ अल्लाह मुझे मेरे प्यारों का भी ना दिखाना, जिसको देखना जिंदगी में देखे। मर की खबर सुन के तो लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, जिंदगी में साथ बैठों की कदर नहीं लोग करते। तो मेरा मुंह देखने कोई ना आए, इसलिए कि पसंदीदा अमल नहीं है। मैयत को चादर से ढांप देना चाहिए। नबी सल्लम के चेहरे पे यमनी चादर जो धारीदार थी वो डाल दी गई थी, हजरत आयशा की रिवायत है बुखारी और मुस्लिम में। नेक्स्ट थिंग राइट अवे, बाकी काम तो लोग कर रहे हैं, वो बहुत सारे हैं, सारे तो ये लेक्चर सुन भी नहीं रहे। आपने जो करना है, फौरन से पहले मैयत के वरसा में से कोई एक शख्स, हर एक जितने भी आपके लोग हैं जिनको भी आप पूछ सकते हैं राइट अवे, बाकी कफन दफन बाद की बातें हैं, आप फोन करें, मौजूद लोगों से पूछें कि इसने किसी का कुछ देना है या लेना है। तो वरसा की पहली फिक्र ये लग जानी चाहिए कि मैयत का कर्ज अदा हो। अदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उसकी खबर दे दें, खबर दे दें कि है मैं दूंगा अदा करूंगा, और फिर उसके ऊपर रहें। क्योंकि हदीस सुन लीजिए, अबू हुरैरा की रिवायत है कि तिर्मिजी और अहमद और इब्ने माजा में, मोमिन की रूह उस वक्त तक जन्नत में जाने से रुकी रहती है जब तक इसका कर्ज अदा ना किया जाए। हम सोचते हैं ना कि शायद हमने अभी दफन नहीं किया तो उनकी रूह नहीं जाएगी, रूह तो मरते ही जाना चाहती है। जब तक ये कर्ज का मामला नहीं हो रहा, या आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जा रहे हैं छोड़ रहे हैं, वहां मामला गड़बड़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना होता है, मैयत की खबर भिजवाएं। ये भी मसनून है कि दूसरों को खबर दीजिए। अल्लाह के नबी के पास निजाशी की मौत की खबर आई, उसी रोज आपको पता चल गया जिस वक्त वो फौत हुआ, आप जनाजा गा के और उसकी नमाज जनाजा आपने पढ़ाई गायबाना तौर पे, चार तकबीरें थी। फिर क्या करें, अब लोग आना शुरू हो गए, अब क्या करना है, वहां बैठकर पहली बात देखिए कि मरने वाले के ऊपर ये कहना कि मर गए, अपना हम उस वक्त अपना सोच रहे होते हैं, नहीं, उसकी बातें करें, ढूंढ ढूंढ के उसकी खूबियां निकालें। तो नेक्स्ट थिंग क्या है कि उसकी खूबियों का जिक्र करें। जैसे अभी बाजी कह रही थी कि वो बड़ा लोगों को देखते थे, ये जान के करें, क्योंकि हजरत आयशा की रिवायत है नबी सल्लम से, फरमाया कि आपके सामने किसी मरने वाले का जिक्र बुराई के साथ किया गया तो आपने फरमाया कि अपने फौत शुदगान का जिक्र भलाई के सिवा यानी बुराई से ना करो। निसाई की रिवायत है, ये गवाहियां होती हैं। इसी तरह हजरत आयशा कहती हैं, ला तसुब्बुल अमवात, मुर्दों को बुरा ना कहा करो, जो कुछ उन्होंने आगे भेजा उसका बदला पा चुके। तो मेरा आपका फर्ज है, देखिए जरूरी नहीं कि हमारे करीबी फ्रेंड्स का या अपने करीबी बहन भाइयों का ही हो, खानदान का कोई भी दुनिया से जाता है, आपकी सास चली गई, आपको सदमे देने दुख देने वाला कोई रिश्तेदार चला गया, राइट अवे उसको माफ करें। नेक्स्ट थिंग, आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक है हमसे, आप दिल की गहराई से कि अल्लाह ताला मैंने उनको माफ किया, क्योंकि अब उनकी अदालत लगी हुई है उधर। हम अपने खाने पकानों में और चीजों में लग जाते हैं, उनके लिए बात करें कि वहां क्या हो रहा है। इसके अलावा गम की हालत में मैयत पे रोना चीखना चिल्लाना मातम करना, इसकी कतन इजाजत नहीं है। इब्ने मसूद से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने हालत गम में अपना चेहरा पीटा, अपना दामन फाड़ा और जाहिलियत की बातें की, वो हम में से नहीं, यानी इस्लाम से निकल जाता है बंदा ऐसे काम करके। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जिस घर में मातम और नोहा वगैरह होता है, पहले सी रस्म है, और जाने वाला अगर नहीं कह के जाता कि मुझ पर ना करना, तो उसके बारे में हदीस सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त हदीस है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो क्या है कि मन नेहा अलै ही युअज़्ज़ब बिमा नेहा अलै, जिस मैयत पर नोहा किया जाए, इस नोहे की वजह से मैयत को अजाब होता है, मरने वाले को अजाब होता है। हम तो उसकी मोहब्बत में रो रहे हैं, अगर खुद कहकर नहीं गया कि मेरे पे ना रोना तब भी, या कोई ये कहकर गया कि मेरे पे रोना। इब्ने उमर की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल मैयत युअज़्ज़ब बिबुकाई अहलिही अलैह, मुर्दे को इसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब होता है। आप समझिए इस बात को, आप माँ हैं, बहन हैं, बीवी हैं, बेटी हैं, आप उसको सजा देना चाहते हैं? नहीं चाहते। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सब्र करें, यही है इन्नमा सब्रु इंदा सदमते लूला। इब्ने माजा की रिवायत में अबू मामा से कि वक्त पड़ने पे तो सब्र है, बाद में तो वैसे ही आ जाता है। मैयत को बोसा दिया जा सकता है, किस कर सकते हैं, कर लेनी चाहिए, अगर कोई महरम रिश्ता है कोई हर्ज नहीं है। खामोशी से आंसू बहा सकते हैं, रो भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी को किसी ने देखा तो आपने फरमाया ये तो आंखें हैं। हजरत अनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की तदफीन हो रही थी, यानी उसको दफन कर रहे थे, तो रसूलुल्लाह कब्र के ऊपर बैठे हुए थे और आपकी आंखों से आंसू जा रहे थे। और इसी तरह आयशा कहती हैं कि अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपको बोसा दिया, हजरत अबू बकर ने दिया, ये इब्ने माजा की रिवायत है। इसी तरह हजरत आयशा कहती हैं कि हजरत साद बिन माज फौत हुए तो अल्लाह के नबी अबू बकर और उमर इनके पास पहुंचे। इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अपने हुजरे में अबू बकर उमर के रोने की आवाजों में अलग अलग पहचान रही थी, यानी सारे ही रो रहे थे। देखिए पत्थर दिल नहीं होता, ईमान वाले का तो दिल और ज्यादा नरम होता है। फिर इसी तरह हजरत आयशा कहती है उस्मान बिन मजून को मरने के बाद बोसा दिया रसूलुल्लाह ने और आप उनकी मैयत पर रो रहे थे, या आयशा ने फरमाया कि आपकी आंखें बह रही थी। सब्र करने से जहन्नम की आग से रुकावट की खुशखबरी है, सब्र कर जाए। और मैंने बहुत सारे कल्चर देखे हैं, साथियों को बताती रहती हूँ, मैंने पंजाबी कल्चर भी देखा है, पीछे से मेरा भी ताल्लुक पंजाब से ही है, और मैंने कुछ दूसरे कल्चर भी देखे हैं, मैंने ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखा है। मैं किसी तासुब की बात नहीं कर रही, लेकिन हम पंजाबी ऐसे वक्तों पर सब्र नहीं करते और रो रो के दिखाते हैं, रोना सिखाते हैं कि बाहर से ठीक जाते हैं लोग, आगे अंदर जाके हर एक का गले लग के रोना और रुलाना और उससे कहानी सुनना। बाज़ तो ख़ानदान में प्रोफेशनल्स होते हैं ऐसी कि वो बैठती हैं वहाँ क्योंकि वो सबके साथ रो लेती हैं, दूसरों को रोना नहीं आता, ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ सब्र करेंगे तो हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी, तवील हदीस है कि जिसमें एक ऐसा मौका था कि अल्लाह के नबी ने सिर्फ औरतों को नसीहत की और आपने फरमाया कि जिस औरत के 3 बच्चे फौत हो जाएं और वो सब्र करे तो वो बच्चे जहन्नुम से रुकावट होंगे। तो किसी ने कहा अच्छा 2 हों, तो कहा 2 बच्चों पर सब्र करने पर भी यही होगा। और एक और रिवायत में अबू मूसा से है कि आपने फरमाया कि जब किसी का कोई बच्चा फौत होता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि जब तुमने उसको खबर दी थी उसके बच्चे की फौत की या उसने देखा तो उसको फौत होते हुए, तो क्या कहा? फरमाता है क्या तुमने मेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा ले लिया? फरिश्ते कहते हैं जी हाँ। तो कहा बंदे ने क्या कहा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह का। अब आप सोचें किसी की मौत की खबर आपको मिले और आप कहे अल्हम्दुलिल्लाह, लोग तो आपको इस्लाम से निकाल देंगे। क्या आपने शुक्र किया? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उस पे अल्लाह ताला जन्नत में एक महल बनाते हैं और उसका नाम बैतुल हम्द रखते हैं। तो ये सब्र करना बड़ी बात है, अल्लाह ताला करवा ले और आसानियों से रखे। अच्छा एक बात याद रखिए, हमारे कल्चर में ये जो कहते हैं ना कि मरने के बाद मियाँ बीवी का ताल्लुक टूट जाता है, ये बात गलत है। मैं कुछ चीज़ें सिर्फ पॉइंट्स दे रही हूँ, 2-3 और, कि क्या चीज़ें हमारे उस सोसाइटी में गलत हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है बीवी को मुंह नहीं देखने देते, क्यों जी ये गैर महरम हो गया, तो वो जो बाकी सारे गाँव की औरतें आ रही हैं वो कौन है उसकी? मैंने खुद लोगों से सुना कि उसको पीछे कर दो, रो नहीं सकती, बात नहीं कर सकती क्योंकि निकाह टूट गया। हजरत आयशा कहती है जिब्राइल हजरत आयशा की तस्वीर रेशमी कपड़े में लपेट कर लाए और कहा कि ये दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी हैं। दूसरी बात मैंने आपको हदीस सुनाई है कि अल्लाह के नबी आयशा को कहते थे कि अगर तू मर गई तो मैं तुझे गुसल दूंगा, तो निकाह टूट गया तो ये गुसल कैसे होगा? तो बहरहाल ये चीजें समझने की है, कुछ चीजें जो सुन्नत से साबित नहीं है लेकिन हमारे कल्चर में, उसको बोल देती हूँ। पहली बात है मरने वाले के सर के करीब कुरान मजीद रखना, बाद लोग रख देते हैं कि राहदारी की सफर है, ये जायज नहीं है। मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ना, ये भी कुछ सुन्नत से साबित नहीं है, अब हमारे कल्चर में बहुत आम हो गया इसलिए हमें अजीब नहीं लगता। मरने वाले का मुंह किबले की तरफ कर देना, नहीं, जब जनाजा पढ़ाया जाता है फिर मुंह होता है, वैसे उसका मुंह उधर नहीं किया जाता। फिर इसी तरह मरने वाले के नाखून या उसके जेर नाफ बाल साफ कोई करने लग जाते हैं कि इसकी क्लीनिंग कर दें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। फिर ये अकीदा रखना कि जुम्मे के दिन कोई मरा है तो उसको अजाब नहीं होगा या जुमे के वक्त पे अजाब नहीं होता, ये सुन्नत से साबित नहीं है। अल्लाह कर दे तो सिर्फ जुमे को क्यों ना हो, आम तौर पे भी अजाब से अल्लाह बचा दे। फिर इसी तरह मरने वाले की चारपाई के गिर्द बैठकर जिक्र करना, कुछ भी पढ़ना पढ़ाना, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। मरने वाले पर सिर्फ फातिहा ही पढ़ते रहना बैठकर, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। मरने वाले पर नात खवानी करना और उसकी उजरत वसूल करना, राहदारी यानी मैयत उठाने से कबल गल्ला साथ रखना और दफन के बाद गरीबों में तकसीम करने की रस्म अदा करना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। फिर मरने वाले के पास सूरह बकरा की तिलावत करना सुन्नत से साबित नहीं है। फिर इसी तरह हीला यानी मैयत उठाते वक्त मैयत पर कुरान मजीद रखना और उसके वजन के बराबर गल्ला या पैसे मौलवी साहब को देने की रस्म, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। और बीवी के फौत होने पर शौहर को गैर महरम करार देना, ये साबित नहीं है। करें क्या, बस आप उस वक्त अपना होश सलामत रखें और उनके जाने के इंतजाम में रहें। ये जो एक हमारे कल्चर में बात है, जो मुझे साथियों में से किसी ने उसकी तरफ ख्याल दिलाया कि कुछ लोग फिर मैयत के उठाते ही खाने की फिक्र शुरू हो जाते हैं और दूसरे दिन भी खाना और तीसरे दिन भी, तो ये पसंदीदा अमल नहीं है। बल्कि लेकर जाएं, जिसका कोई फौत होता है हदीस में आता है कि आप उसको खाना दें, क्योंकि वो उस वक्त खाना नहीं पका सकते और उस वक्त हरीरा पकाकर आपने दिया। मेरे जाफर तैयार की जब वफात हुई तो उनके घर वालों को आपने हरीरा, जैसे हलवा टाइप है, आपने फरमाया इसमें दिल के लिए ताकत है। तो ये चंद बातें थी।